ग्लानेर भवति भारत अद्युतानं मधर्मशं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय शम्भभामि युगे युगे शम्भभामि युगे युगे हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna.
हरे कृष्णा स्वागत है आप सबका इस साप्ताहिक कृष्ण भावना में कार्यक्रम में और एक बार फिर से आप सबको हरे कृष्णा मंदिर में आने के हम सादर आमंत्रित करते हैं. याद रहे हमारे मंदिर है 1229 कोर्सफील्ड रिवर हेड हाईवे जो हाईवे 28 के नाम से भी जाना जाता है. वहां पर हर रविवार को विशेष पब्लिक प्रोग्राम होता है जो 11:30 बजे भगवान की कीर्तन भजन के साथ सम्पन्न होता है और उसके बाद में 12:30 बजे भगवान की आरती होती है. आरती के बाद में 1 से 2 बजे तक प्रवचन होता है और उसके बाद हमारे संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की आरती होती है और आरती के बाद में आरती यानी गुरु पूजा होता है और उसके बाद में है महाप्रसाद का वितरण होता है जो 2:30 बजे होता है. आइए आप सब मंदिर आकर के भगवान के दर्शन कीजिए और कृष्ण भावना में कार्यक्रम में सम्मिलित होइए और खुद को देखिए कि ये है क्या.
हरे कृष्णा
यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का मार्ग हरे कृष्ण कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का आश्रय लेता है तो लाभ की पहली श्रेणी होगी चेतो दर्पण मर्जनम. दूसरे शब्दों में केवल कीर्तन करने के द्वारा ही हमारे चित्त के सभी मैल दूर हो जाएगा. कीर्तन कीजिए और हमारे मन में जो मैल है जो हृदय में मल है वो है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर. और इस कीर्तन में कोई वे नहीं कोई खर्च नहीं है कोई हानि नहीं है. यदि कोई एक सप्ताह के लिए भी कीर्तन करता है वह देखेगा कि आध्यात्मिक विज्ञान में वह कितनी अधिक प्रगति कर लेती है. अनेक भक्तों को केवल कीर्तन के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं हम लोग और वे संपूर्ण दर्शन को समझ रहे हैं तथा शुद्ध बन रहे हैं. इस संघ का अभियान केवल चार केवल 1967 में आरंभ हुआ था और अब हमारे बहुत सी शाखाएं हैं। ये अमेरिकन भक्त और विदेशी भक्त में से अध्यात्मिक गंभीरता के साथ ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग भी इसे ग्रहण कीजिए। आप इनसे ही किसी से भी पूछ लीजिए, तेचे तो दर्पण मर्जनम, केवल हरे कृष्णम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन मात्र से, ये महामंत्र के कीर्तन करने मात्र से ही अपने चित यानी हृदय से सब गंदी वस्तुएं को दूर कर देंगे। और वे गंदी वस्तुएं हैं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। श्री कृष्ण संकीर्तन का अगला प्रभाव है महाद्वग्नि निर्वापनम। जैसे कि हृदय से सब गंदे वस्तुएं दूर हो जाती है, वैसे ही संसार की सारी समस्याएं तत्काल हल हो जाती है। इस संसार की तुलना द्वाग्नि के साथ की जाती है। द्वाग्नि का अर्थ होता है वन में लगने वाली भयानक आग। इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, परंतु यह स्वयं बलपूर्वक आता है। भौतिक प्रकृति का यही नियम है। कोई भी हानि अग्नि नहीं चाहता, परंतु हम नगर में कहीं भी जाए अग्नि शामल दल सदैव क्रियाशील रहता है। सदैव कहीं ना कहीं आग लगी रहती है। उस प्रकार अनेक वस्तुएं हैं जिनको कोई नहीं चाहता। कोई मृत्यु नहीं चाहता, परंतु मृत्यु आती है। कोई व्याधि नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, परंतु बीमारी आती है। कोई वृद्धावस्था बुढ़ापा नहीं चाहता, परंतु बुढ़ापा आता है। हमारी इच्छा हमारी कामना के विपरीत ये दुख वर्तमान है। इस प्रकार हमें संसार का की अवस्था पर विचार करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन समझने के लिए बनाया गया है। पशुओं के समान आहार निंद्रा भय और मैथुन में ही अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। यह सभ्यता की प्रगति नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहता है कि यह शरीर केवल इंद्रिया तृप्ति के लिए ही कठोर परिश्रम करने रहने के लिए नहीं बनाया गया है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामनार्थे विडभुजाम थे। भागवतम पांचवा कैंटो चैप्टर 5 टेक्स्ट 1। कठोर परिश्रम करना और इंद्रिया तृप्ति के द्वारा अपने को संतुष्ट करना शूकरों का कार्य है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य तपस्या करना सीखे, विशेषकर भारत में अनेक महान ऋषियों अनेक महान राजाओं और अनेक ब्रह्मचारियों एवं अनेक सन्यासियों ने अपना जीवन महान तपस्या करने में व्यतीत किया है, ताकि वे और अधिक निंद्रा में ना सो जाए। बुद्ध देव युवराज थे, परंतु उन्होंने प्रत्येक वस्तु को त्याग कर अपने को तपस्या में लगाया। वास्तविक जीवन तो यही है। जब महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, 24 वर्ष के थे, तो उन्होंने अपना राज्य, युवा पत्नी और अपनी संतानों को त्याग दिया और वे तपस्या करने लगे। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष के थे, तो उन्होंने अपनी युवा पत्नी, माँ और प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया। ऐसे कई उदाहरण है। भारत तपोभूमि है, परंतु हम इसे भूल रहे हैं। अब हम इसे तकनीकी की भूमि बना रहे हैं। आश्चर्य होता है कि अब भारत इस तपस्या का प्रचार नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत धर्म का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्षेत्र संवेता युवोत्सव गीता अध्याय 1 श्लोक 1। इस कलयुग में न केवल भारत में अपितु सभी स्थानों पर प्रत्येक वस्तु निम्न कोटि की हो गई है। प्रयाण कल्पायसु सभ्य कला वसिन युगो जना भगवद गीता किंतु वंश अध्याय 1 श्लोक 10। इस कलयुग में आयु कम हो गई और आत्मा साक्षात्कार को समझने की मनुष्य की ओर मनुष्य को कोई भी रुचि नहीं है। यदि रुचि है तो भी वे अनेक अनेक धोखेबाज नेताओं के द्वारा सदा मार्ग भ्रष्ट कर दिए जाते हैं। यह युग घोर भ्रष्टाचार का युग है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण कीर्तन की विधि सर्वोत्तम और सर्वाधिक सरल मार्ग है। हरे रनाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम कीर्तन के अतिरिक्त भगवान की कीर्ति गान करने के लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह सभी शास्त्रों का आदेश है और कोई दूसरी गति यानी मार्ग नहीं है। कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरी गति नहीं है। या बृहन्नारदीय पुराण का श्लोक है, हरे रनाम एक केवलम, केवल हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं, तो हमें इसको स्वीकार करना ही चाहिए। श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद 33 अध्याय 51 श्लोक में इसी प्रकार एक और श्लोक है, कलेर दोष निधि राजन अस्थिर भोग होयो को महान गुण। उस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस युग के दोषों के विषय में जानकारी दी थी और अब कलयुग के वे सब लक्षण प्रत्यक्ष देख पड़ रहा है। किंतु निष्कर्ष में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजन, यह कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक सुअवसर है। वह सुअवसर क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा मुक्त होकर भगवान के धाम में लौटा जा सकता है। यह भक्ति मार्ग व्यवहारिक और प्रामाणिक है तथा कोई स्वयं भी यह परीक्षण कर सकता है कि कैसे वह केवल कीर्तन करने के द्वारा उन्नति कर रहा है। यह कृष्ण भावनामृत अभियान कोई नई वस्तु नहीं है जिसे हमने प्रारंभ कर दिया है या रचा है। यह वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रमाणित है। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे आचार्यों को और अन्य महाजनों के द्वारा प्रमाणित है और विधि भी बहुत सरल है। इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। हम किसी भी प्रकार का दाम नहीं ले रहे हैं। हम फीस देने के लिए नहीं कह रहे हैं और ना ही लोगों को कोई गुप्त मंत्र देकर या वचन दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर वे भगवान बन जाएंगे। नहीं, यह मार्ग सभी के लिए खुला है। बालक स्त्री युवती युवक यौ वृद्ध सभी लोग कीर्तन कर सकते हैं और उसके परिणाम को देख सकते हैं। और आगे उन्नति करने के लिए ना केवल हम पश्चिम देशों में अपने कृषि प्रयोजन नौ वृंदावन की स्थापना कर रहे हैं, परंतु अन्य आध्यात्मिक केंद्रों का भी निर्माण कर रहे हैं, जैसे नवद्वीप और नए जगन्नाथपुरी। हम सैन फ्रांसिस्को में नव जगन्नाथपुरी का पहले से ही आरंभ कर चुके हैं और संपूर्ण विश्व में रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रकार से लंदन में भी रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। युक्त हार्य विहारस्य युक्त चेष्टय कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधे में योग भवति दुखः। गीता 6 अध्याय 17 श्लोक। यह मानव जीवन कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है। हम शरीर का केवल निर्वाह करके संतुष्ट रहे और शेष समय हम अपने कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में लगाए ताकि इस शरीर को त्यागने के बाद हमें फिर से कोई दूसरा भौतिक शरीर ना लेना पड़े और हम वापस अपने घर भगवान के धाम में लौट जाएं। मनुष्य जीवन का यही आदर्श होना चाहिए। भौतिक जीवन का अर्थ है आहार निंद्रा मैथुन एवं संरक्षण। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है कि उन क्रियाओं से कुछ श्रेष्ठ क्रिया। पशु जीवन और मानव जीवन के बीच में भी यही अंतर है। पशु जीवन में और मनुष्य जीवन में ये चार क्रियाएं समान हैं, अर्थात खाना सोना आत्मरक्षा करना और मैथुन करना। यह पशु का हार है, मनुष्य की भी हार रहता है। मनुष्य सोता है और कुत्ता भी पशु भी सोता है। मनुष्य काम जीवन में और पशु भी कामचार का जीवन है। पशु अपने ढंग से अपनी रक्षा करता है और मनुष्य अपने ढंग से। भले ही वह परमाणु बम बना रहे हैं और प्रयोग कर सकते हैं, ये चार सिद्धांत मनुष्य पशु दोनों के लिए समान और इन सिद्धांतों में उन्नति करना मानव सभ्यता नहीं है वरन पर पशु सभ्यता है। मानव सभ्यता का अर्थ है अथो ब्रह्म जिज्ञासा। यह पहला वेदांत सूत्र का मंत्र है, अथो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का समय है। मनुष्य जीवन तो यही है, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, जिज्ञासा उत्तमम, तब तक वह पशु ही है, क्योंकि वह इन्हीं चार सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताता है। उसे यह जानने के लिए अवश्य ही जिज्ञासा करनी चाहिए कि वह कौन है और उसे क्यों जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्या इनका कोई समाधान नहीं है? इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यही मनुष्य का जीवन है, यही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है कि मनुष्य जीवन और भौतिक जीवन का अर्थ है पशु जीवन। बस हमें भागवत गीता में अनुमोदित किया गए समाधानों को ग्रहण करना चाहिए। युक्त हार विहार से, उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक मनुष्य बनने जा रहा हूँ, इसका यह अर्थ तो नहीं है हुआ कि मैं भोजन करना त्याग दूंगा, वरन मेरे भोजन में संतुलन हो। भागवत गीता वर्णन करती है कि कौन सा भोजन प्रथम श्रेणी का है, अर्थात सतोगुणी है, और कौन सा रजोगुणी और कौन सा तमोगुणी भोजन है। हमें स्वयं को मानव सभ्यता के सात्विक स्तर तक उठाना है। अब तब हम अपनी अप्रकृति दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु शास्त्रों में दी गई है, दुर्भाग्यवश हम शास्त्रों से प्रमाश नहीं करते हैं। यम प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघ से जायते। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 20। जब तक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान को नहीं समझ पाएंगे। प्रसन्न मनसा, हम ब्रह्मभूत स्तर पर आए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांचती। शास्त्रों में ये आदेश है, अतः हमें इनसे लाभ उठाना चाहिए और इनका प्रचार करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति का यही उत्तरदायित्व है। जन साधारण को इतना ज्ञान है कि भगवान महान है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान वास्तव में कितने महान है। यह सूचना हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होगी। इस लोह युग यानी कि कलयुग में हमारा कर्तव्य यही है, यही हरि कीर्तन अर्थात परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन है। भगवान का कीर्तन गान करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, इस कीर्तन का जप करना, इस मंत्र का जप करना, कीर्तन करना, इसी से हम हमारे मन के कृष्ण भावनामृत जागृत होंगे। अनेक लाखों वर्षों के कार्मिक विकास के पश्चात मानव जीवन प्राप्त होता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां हैं जीवन का आरंभ जलचर प्राणियों से हुआ है, क्योंकि हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सृष्टि के आरंभ से संपूर्ण लोक जलमग्न था। यह भौतिक जगत पंचभूत तत्व भूमि जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त तीन सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि और अहंकार। इन आवरणों के पीछे आत्मा है, जो कि इन आठ तत्वों से ढका है। यह जानकारी भागवत गीता में दी गई है। मनुष्य ही केवल ऐसे प्राणी नहीं है जिनमें आत्मा होती है, हम सब में आत्मा है। पशु पक्षी सिर्फ रेंगने वाले जीव, कीड़ वृक्ष पौधे जलचर इत्यादि सभी में आत्मा है। आत्मा केवल विभिन्न वस्त्रों से ढकी हुई है, जैसे आप में कुछ, जैसे हम कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, कुछ हरे तो कुछ लाल इत्यादि। इसी प्रकार से आत्मा सभी जीवों में है, परंतु हम इस वस्त्रों से संबंध नहीं है, हम आत्मा के रूप में आपसे संबंध है। इस प्रकार भगवत गीता में आता है कि विद्या विनय संपन्नो ब्रह्मणो गवि हस्तिनी सुचि चैव स्वपाकेना पंडिता समदर्शिनः। एक विनीत पंडित सच्चे ज्ञान के कारण विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होता है। केशग्रस्त भाग्यस्य शांत सदृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपो हम सक्यातीतो ही चित्कणा। चिन्मय परमाणु के असंख्य अंश है, जो केश के अगले भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। हमारे पास आत्मा के परिणाम परिमाण को नापने का कोई यंत्र नहीं है, इसलिए आत्मा को इस ढंग से नापा गया है। दूसरे शब्दों में आत्मा परमाणु से भी अधिक छोटी है। वह लघु अंश आप में है, मुझ में है, हाथी में है, विशाल काय पशुओं में है, सभी मनुष्यों में है, चींटी में है, वृक्ष में है, सभी के अंदर है। किंतु वैज्ञानिक ज्ञान आत्मा के माप को इसे नाप नहीं सकते, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, ना ही चिकित्सक या डॉक्टर शरीर के भीतर आत्मा के स्थान का पता लगा सकता है। फलस्वरूप भौतिक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल रह लेते हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, परंतु यह तत्व नहीं है, आत्मा है। एक जीवित और मृत शरीर का अंतर आत्मा ही की ही उपस्थिति के कारण है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। कोई कितना भी महान वैज्ञानिक या दार्शनिक क्यों ना हो, उसे यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब उसका कोई मूल्य नहीं है और उसे फेंक दिया जाता है। हमें उस तत्व को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा का मूल्य है, शरीर का नहीं। इस तत्व को, इस आत्मा का देहांतर हो रहा है। भागवत गीता दूसरे अध्याय 22वें श्लोक में समझाया गया है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नयाम सम्याति नवानि देहि। जो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर देह ग्रहण करती है। जब एक सूट पुराना हो जाता है तो हम उसे त्याग देते हैं और दूसरा सूट ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार इच्छा के अनुसार आत्मा वस्त्र परिवर्तन कर रही है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, अतः उसमें भी दैवीय गुण है। भगवान परम इच्छा, परम शक्ति, परम स्वाधीन है और उनका विभिन्न अंश होने के कारण हम में ये सब गुण अत्याधिक लघु मात्रा में छोटे मात्रा में है। हमसे इस इच्छा विचार अनुभव इत्यादि करने की शक्ति है। वेदों में आता है कि भगवान सभी चेतन प्राणियों के बीच परम चेतन बल यानी प्राणी है। भगवान ही सभी जीवों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। हम असंख्य जीव है, हमारी संख्या की कोई सीमा नहीं, परंतु भगवान एक है, वे भी हमारे समान ही है, परंतु हम उस परम चेतन शक्ति के एक सूक्ष्म अंश है। उदाहरण के लिए सोने का एक अंश भी गुण की दृष्टि से सोने की खान के समान है। यदि हम जल की एक बूंद में पाए जाने वाले तत्व का रसायन विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि उस बूंद में भी सभी तत्व है जो विशाल सागर में पाए जाते हैं। उसी प्रकार हम भगवान के अंश होने के कारण उनमें अभिन्न है, उनसे अभिन्न है। यह ईश्वरीय अंश अर्थात आत्मा जीवन शक्ति विभिन्न योनियों में देहांतर हो रही है, जलचर में, वृक्षों में और पौधों में, फिर कीटाणु के जीवन में, फिर रेंगने वाले जीवों में, तत्पश्चात पक्षियों और पशुओं के शरीर में, डार्विन का कार्मिक विकास का सिद्धांत आत्मा के देहांतर की एक अंशिक व्याख्यान है। डार्विन ने वैदिक साहित्य से यह जानकारी तो ले ली परंतु उसमें आत्मा के बारे में कोई कल्पना नहीं है। अंतर यह है कि आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में देहांतर हो रही है, जलचर जीवन से वृक्ष से में जीवन, कीटाणु जीवन में, फिर पक्षी जीवन में, फिर पशु जीवन में, फिर मानव जीवन में, और मानव जीवन के भीतर आत्मा असभ्य जीवन से सभ्य जीवन में आती है इत्यादि। मनुष्य का सभ्य जीवन कार्मिक विकास के संपाति का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक या एक संधि स्थान है जहाँ से या तो हम कार्मिक विकास के चक्र में पुनः नीचे जा सकते हैं या हम अपने को दैवी जीवन तक ऊपर उठा सकते हैं। उसका चुनाव हम पर निर्भर करता है। इसे भागवत गीता में दर्शाया गया है। इस मानव जीवन का अर्थ वास्तविक में विकसित चेतना है, इसलिए हमें अपना जीवन पशुओं और शुक्रों के समान व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। आदेश यही है, यद्यपि यह शरीर पशुओं के शरीर के समान नश्वर है, किंतु अंतर यह है कि जीवन में हम सर्वोच्च सिद्धि को पा सकते हैं। हम भगवान के अंश है, परंतु किसी ना किसी प्रकार हम इस भवसागर में गिर पड़े हैं। अब हमें इस प्रकार विकास करना है कि हम अपने घर भगवान के धाम को वापस लौट सके। यही सर्वोच्च सिद्धि है, और हम इसे क्या कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सिर्फ भगवान के कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप और कीर्तन करने मात्र से हम भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं।
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare Hare